ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 6 अध्याय 7 श्लोक संख्या 25 से 30 तक। तो 30 नंबर का श्लोक तो लिखा है, 25 से खाली श्लोक पढ़ेंगे फिर ये। तद विश्वरूप भजतासु विप्रम तपस्विनम त्वाष्टमथात्यवन्तम् सभाजितोत्थान सविदास्यतेवो यदि समिश्चितमुत्तस्य कर्म। श्री शुक उवाच तैव मुदिता राजन् ब्राह्मणा विगतज्वरा ऋषि त्वाष्टम व्रज परिवश्य ज्येष्ठमब्रुवन्। श्री देवाऊचु वयंते तीसरय प्राप्ताश्रमं भद्रमस्तुते काम संपादता तातो पितृणां समयोजित। पुत्राणां हि परो धर्मो पितृशुशूषणं सताम् अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुतो ब्रह्मचारिणां। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्तिर्माता साक्षात् श्रेष्ठनो। अभी 30 नंबर श्लोक है। आचार्य दयाया भगनी मूर्ति धर्मस्यातिथि स्वयं अग्रेभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मना। तो आप पढ़िए। दयाया दयाया भगनी मूर्ति दयाया भगनी मूर्ति धर्मस्य आत्मयतिथि स्वयं धर्मस्य आत्मातिथि स्वयं अग्रे अभ्यागत मूर्ति अग्रे अभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनः सर्वभूतानि चात्मनः। दयाया भगनी मूर्ति धर्मस्य आत्मातिथि स्वयं अग्नि भव्यागत मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनः। पढ़िए। आया भगनी मूर्ति माता जी दयाया कोई है? कोई माता जी पढ़ी दयाया भगनी मूर्ति दयाया कृपा की भगिनी बहन मूर्ति है साक्षात धर्मस्य धर्म का आत्मा स्वयं अतिथि अतिथि स्वयं स्वयं अग्नि अग्निदेव का अभ्यागत आमंत्रित मेहमान मूर्ति साक्षात सर्वभूतानि समस्त जीव च तथा आत्मनः परमेश्वर विष्णु का आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता श्री ब्रह्म का भाई राजा इंद्र का माता पृथ्वी लोग तथा बहन कृपा की अतिथि धर्म का आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव श्री भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। मेरे शांत हो रहिएगा। आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता श्री ब्रह्मा का भाई राजा इंद्र का माता पृथ्वी लोग बहन कृपा की अतिथि धर्म का आमंत्रित मेहमान अग्नि का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आचार्य पंडित की नीति चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित हैं, अतः जीव का श्री भगवान के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु पिता भाई बहन अतिथि आदि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदंतिकम् मंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन वैश्यवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धुदीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते रूपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिवान सुते देवी प्रणमामी हरि प्रिय। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। अमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं श्री असीम प्रभु और आप सबका को प्रणाम करता हूं। मैं तो क्लास में आता नहीं हूं, इधर उधर घूमता रहता हूं, तो ऐसा कोई भी भाव मन में मत रखना कि खुद तो आता नहीं और आसन पर आके बैठ जाता है। तो ये सब आपकी दया हमारे प्रति है। मैं इधर उधर चला जाता हूं कथा सत्संग।
ये फैन दो बंद नहीं होता, एक दो फैन बंद।
हाँ, बस गीता में भगवान इस श्लोक पर बोलते हैं, फिर प्रसंग पर कहेंगे कौन सा अध्याय। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपा के च पंडिता समदर्शन। जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, संत लोग हैं, वो कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े हाथी सब में भगवान का दर्शन करते हैं। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपा के चौ पंडिता समदर्शिना। सब क्यों करते हैं? क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं। ये प्रसंग इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। इंद्र शिष्य है, गुरु बृहस्पति गुरु हैं। देवता और दैत्य दोनों ही कश्यप मुनि की संतान हैं, द्वितीय और अदिति की। पिता एक मां दो हैं, लेकिन दोनों भाइयों में गद्दी के लिए तनाव रहता है, हमेशा झगड़ा। तो कभी इंद्र गद्दी पर बैठते हैं, कभी देवताओं के राजा दैत्यों के राजा बलि बैठते हैं। इंद्र पदवी का नाम है। यहां पर इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया। क्या? क्यों? सभा में अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, गुरु का आगमन हुआ तो उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया। भौतिक जगत में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक तो तकलीफ है तो साधु महात्माओं के पास जाते हैं लोग, कृपा करिए, और जैसी समस्या हल हो गई और कोई भक्त या गुरु ने पूछा ठीक ठाक चल रहा है, जवाब देने को भी कोई तैयार नहीं रहता। ये सांसारिक अभिव्यक्ति इसमें बताई है। कोई गुरु बृहस्पति के प्रति इंद्र अपमान नहीं करते, भगवान उनके द्वारा लीला करा रहे हमको शिक्षा देने के लिए। इसलिए गुरु की भूमिका मुख्य बताई है संसार में। भगवान का प्रतिनिधि गुरु होता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यते एव सद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। गुरुवाष्टकम में सुबह हम गाते हैं। गुरु की कृपा से अगर कोई व्यक्ति उन्नति चाहता है तो उसे गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। अगर अप्रसन्न करेगा तो जैसे इंद्र अपने ऐश्वर्य को खो देता है, यश को खो देता है, वैसे जीव भी संसार में अपने यश को खो देता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले गुरु है कि नहीं। जब गुरु हो तो उसका सम्मान किया जाए, गुरु है ही नहीं तो किसका सम्मान करूं। इसलिए प्रत्येक जीव को गुरु आश्रित होना चाहिए। गुरु क्या है? गुरु भगवान का भजन कराता है। गुरुओं की भी कई श्रृंखला है। कुछ भौतिक गुरु हैं, कहते हमारे शरणागत हो ये रातों रात करोड़पति बना दूंगा। अभी हम राजस्थान गए थे प्रचार करने, तो मैंने वहां एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री देखी, मिराज नाम है, पूरा नाम नहीं बताएंगे। तो बहुत गरीब आदमी था वो, तो उसने एक महात्मा से पूछा कि मैं कौन सा ऐसा धंधा करूं कि रातों रात करोड़पति हो जाऊं। तो उन्होंने कहा तो तम्बाकू बेच। वो तम्बाकू की पुड़िया बेचने लगा। आप कभी राजस्थान नाथद्वारा में जाएं, नाथद्वारा रोड पे पूरा इंडस्ट्री, बंगलो, शॉपिंग, बड़े बड़े मॉल उन्हीं के नाम से है सब। तो गुजरात के एक बहुत बड़े आचार्य उनके गुरु हैं, तो वो तम्बाकू की पुड़िया बेच करके इस वक्त तो अब्जोपति आदमी है। लेकिन जैन भक्तों के साथ में राजस्थान गया था तो बता रहे थे कि हर साल राजस्थान में कथा कराते हैं, लाखों लोगों को भोजन कराते हैं फ्री में, अकेला आदमी क्योंकि पैसा है। लेकिन जब वो अपने गुरु से ये कहते हैं कि हमको दीक्षा दे दीजिए, तो गुरु जी कहते हैं कि पहले तम्बाकू का धंधा बंद करो। अब शुरू भी उन्होंने कराया, बंद भी ये कराते हैं। अब जब कि उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट तम्बाकू से होता है, गुटके में बहुत प्रॉफिट है, एक रुपए का मिलता है जो है। ये पूरे विश्व में जो गुटखा बेचते हैं इनका पर डे का करोड़ रुपए इनकम होता है, वो दिखता है एक रुपए का छोटा सा। एक आदमी चार पांच खा जाता है रोज। तो ऐसे भी गुरु हैं जो चमका देंगे रातों रात। कई गुरु ऐसे हैं जो बोलते हैं चुनाव लड़ो हम नेता बना देंगे, जीत जाएगा तो जाओ। अभी गुरु पूर्णिमा होती है, हम लोग श्री व्यासदेव जी की पूजा करते हैं, क्रिकेट वाले अपने गुरु की करते हैं, पॉलिटिशियन लोग अपने गुरु की करते हैं, जरूरी नहीं है कि व्यासदेव जी की सब करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पे व्यासदेव जी का लेख बहुत कम आता है, लेकिन पॉलिटिकल नेताओं का बहुत ज्यादा आता है कि क्रिकेट के फलाने इंटरनेशनल स्टार ने आज अपने गुरु की पूजा की। क्या सिखाया उसने? एक लकड़ी पर बॉल फेंकना सिखाया। नेता ने क्या सिखाया? कैसे दूसरे को चूना लगाया जाता है, कैसे बड़ी बड़ी बात करके चुनाव जीता जाता है, ये गुरु जी सिखाते हैं, तभी तो जीतेगा हो। अगर उसको बोल देंगे एकदम सत्यमबद्ध तो ऐसे चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। तो सबके गुरु, लेकिन वास्तव में गुरु कौन है? जो गोविंद को बताते हैं, हिंदी में भी पद है, गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। जिस गुरु ने गोविंद को बताया, भगवान कृष्ण को बताया, उस गुरु का पहले दर्शन। सहजोबाई करके एक भक्त हुई है, वो राम भक्त थी, तो जब वो कीर्तन करती तो भगवान राम उनके सामने आ जाते, तो भगवान सामने खड़े रहते, कीर्तन करते रहते थे। तो भगवान कहते, सहजो भाई हमारे पास आओ। कहती, नहीं नहीं, मेरे गुरु नहीं हैं यहां पे, मेरे गुरु नहीं हैं, इससे मैं आपके पास नहीं आऊंगी। उनके बहुत सारे पद हैं गुरु के ऊपर। एक पद है कि गुरु न तजो, गुरु न तजो हरि को तज डारो। मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी, मैं हे भगवान आपको छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? गुरु को पकड़ेगी, हमको छोड़ देगी, क्यों ऐसा? तो सहजो भाई कहती हैं, आपने क्या किया, आप जीव को संसार में धकेल देते हैं और माया में फंसा देते हैं। भगवान क्या करते हैं, देवी ही हेसी गुणमयी मम माया दुरतया, खुद गीता में कहते हैं, मामे भी प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंते। सहजो भाई कहती हैं, आप संसार रूपी सागर में डुबा देते हैं, गुरु जी संसार से डूबे हुए जीव को ऊपर भार ले आते। इससे पहले गुरु दर्शन ठीक है या भगवत दर्शन ठीक है? इसलिए आप संसार में फंसाते हैं, गुरु जी संसार से उबारते हैं, इसलिए मैं अपने गुरु का त्याग नहीं करूंगी, कहते हैं। गुरु की महिमा, चौपाई भी है ना एक रामचरित मानस, बिन गुरु भाव निधि तरही न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई, ब्रह्मा शिव सबको गुरु करना पड़ता है। और पद्म पुराण में एक और शिवजी पार्वती से ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य, जो जीव मनुष्य शरीर पाकर के गुरु शरणागत नहीं होता, उसको भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। कोई जीव लाख भगवान का भजन करे, धर्म करे, शास्त्रों के आचार्यों के बताए हुए नियमों का पालन करे, लेकिन गुरु शरणागत नहीं है, किसी गुरु के चरणों में समर्पित नहीं है, तो भगवान उस जीव को कभी भी स्वीकार नहीं करते। शिवजी पार्वती से बात करते हैं पद्म पुराण में, इसे गुरु शरणागति इस संसार में, लेकिन गुरु पक्का होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए। प्रैक्टिकली संसार में देखें तो आजकल तो गुरु, ठोस भाषा में कहें तो गुरु घंटाल, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में भई ठेलम ठेलम। कई गुरु ऐसे भी हैं, कहते हैं सब अनाप शनाप काम करो, खाओ जो मर्जी, महीने की कमीशन हमको भेज दो, यानी हमारी दक्षिणा हमारे पास पहुंचा दो, जो भी आप पाप करोगे वो हम देख लेंगे, हम भगवान से बात कर लेंगे। ऐसे भी गुरु संसार में, कई गुरु भगवान बन के घूम रहे हैं। हम थाना में वर्तक नगर में एक बार कथा करते कि मायावादी साधु के साथ, तो मायावादी का ने कहा कि हमारे साथ कथा करो, तो उनके आने से पहले घंटा मैं करता हूं, तो बाद में फिर वो आते। तो हमने सब भक्तों से कहा जो भी प्रसाद बनेगा ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। तो एक दिन हमने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन नहीं दिया, और मैंने उधर देखा कि किसी रामकृष्ण की सीताराम की कोई फोटो भी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा आप रोज भोग लगाते हो? उन्होंने कहा रोज लगाते हैं। तो मैं समझा आज मैं उनको पूछूंगा और देखूंगा खुद। तो मैंने उनसे कहा कि आपने भोग लगा दिया? बोला हाँ। हमने कहा दिखाओ। तो देखा तो जो महात्मा वहां आते थे हमारी कथा के बाद उनको भोग लगा रखा था। बोला इनको भोग लगा दिया। तो मैंने गुरु को भी कहा, मैंने कहा ये ठीक है कि बनारस के एक महाराज हैं, हम नाम बता देंगे उनका, आपको भवानी नंदन यति महाराज, मैं तो किसी का नाम छुपाता नहीं, तो बहुत बड़ा आश्रम है उनका, थाना में वर्तक नगर में हर साल आते हैं। तो अब मैं नहीं जाता उनके यहां कथा करना, कौन उनका पूजा करने जाएगा। तो फिर मैंने उनको प्रभुपाद जी का बहुत सारे बुक्स दिया, छोटी स्मॉल बुक्स, मैंने कहा पढ़िए इनको, हमारे महापुरुषों के आचार्यों के विचार पढ़िए। वो हरिहर के उपासक हैं, हरि मतलब कृष्ण, हर मतलब महादेव, तो दोनों को पकड़ के रखा है, कृष्ण और महादेव। तो उन्होंने कहा चलता फिरता आदमी भगवान नहीं हो सकता, पत्थर भगवान हो सकता है? तो मैंने कहा तुम चलते फिरते कैसे हो, तुम्हारे खांसने का ठिकाना नहीं, तुम्हारे शरीर का ठिकाना नहीं, ऐसी शिक्षा, तो ऐसे लोग भी गुरु बनकर के घूम रहे हैं। कुछ लोग समाज में ये भी देखा गया है कि कुछ गलत धंधा करने वाले लोग भी गुरु बनाते हैं। हम गुजरात में प्रचार करने जाते हैं तो उन लोगों को तो मालूम नहीं कौन गुरु है कौन क्या है, तो हमको बोले हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा माला जब तो करते नहीं, चार नियमों का पालन, उन्होंने कहा इसलिए नहीं, हम सुबह से शाम तक बहुत झूठ बोलते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं तो हमें बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं, तो हम गुरु शरणागत इसलिए होना चाहते हैं कि जो हमारे पापों की थैली को अपने गले में लटका ले। अब करोड़ों रुपए का पाप की थैली गले में लटकाओ और थैली लटकाने का 1100 रुपए वो देते हैं, जो कि ट्रेन का किराया भी नहीं होता। ऐसे भी लोगों में मैं प्रचार करता हूं जाकर, अब धीरे धीरे थोड़ा आ रहे हैं वो लोग। तो ऐसे भी लोगों का ग्रुप हमने देखा, गुरु लोग भी ऐसे देखे जो माल वाला चेला है उसकी पूछताछ ज्यादा है, गरीबों को भी चेला बना लेते हैं लेकिन झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, जो पैसे वाले हैं उनसे बर्तन नहीं धुलाएंगे। तो गुरु लोग भी ऐसे आपको, और इस्कॉन में भी कई देखा आपने, बाहर के आचार्य लोग आते हैं। एक बार देखा हमने रिसेप्शन पर एक रंग बिरंगा एकदम कृष्ण की तरह ड्रेसिंग किया था, कम से कम 1 किलो परफ्यूम डाल के लाया होगा, रिसेप्शन पर खड़ा था, ऐसी खुशबू आ रही थी। तो गेस्ट हाउस वाले ने उसको रूम तो दे दिया पहले, हमको बोला बाद में आओ। मैं भी गया था रूम मांगने के लिए, तो उसको बोला नहीं नहीं ये कोई बड़े रईस आदमी का गुरु है, उन्होंने पहले ही रूम बुक करा दिया है, और एक लड्डू गोपाल की मूर्ति हाथ में लिया हुआ था। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम होता मंडप हॉल में, रात को 12 बजे तक सब बैनर वगैरह लगा था, सब गिने चुने गोविंदा में भोजन था। तो ऐसा भी गुरु है। अभी वैष्णव में हम कुछ गुरु बताएं बुरा मत मानना। कई लोग गुरु इसलिए बनाते हैं या भक्त इसलिए बन जाते हैं कि जल्दी से अमेरिका पहुंच जाए। अभी हमारे जुहूम का ही मैं बताता हूं आपको, कई मैं नाम नहीं बताऊंगा, कई नए भक्त बन गए। शाम को एक एक किलो दूध, कसरत किया, मसल बना लिया, शाम को दूध, सुबह शाही पनीर, दोपहर में राजभोग, और 9 महीने हुआ नहीं दीक्षा लिया और 12 महीने हुआ नहीं अमेरिका न्यूयॉर्क पहुंच गया। ऐसे भी लोग भक्त बन जाते हैं। ये शिष्य और गुरु का हम दोनों बता रहे हैं, इसमें हम भी आ सकते हैं। हमको तो अभी 25 साल हो गया, जब मैं नेपाल भी अभी गया था कुछ दिन पहले, मैं गया नहीं तो तड़ातड़ और एम्बेसी में लिखा देंगे हम फलानी जगह पुजारी बनने जा रहे हैं, जबकि मंदिर में कोई है ही नहीं। इससे बाहर गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि मैं पूरे भारतवर्ष में प्रचार करता हूं। मैं बाहर घूमता हूं, मुझे मालूम है कौन क्या बोलता है। अभी हमको लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपको 25 साल हो गए, आप अमेरिका नहीं गए अभी तक? फलाने का लड़का तो 1 साल में चला गया, दोनों लड़के, तो वहां पर अपने को सर झुकाना पड़ता है। इसलिए इस तरह के लोगों का ध्यान रखना पड़ना है। एक आदमी ऊपर ही ऊपर, भले इनकी दुर्दशा होगी बाद में, ऐसा तो नहीं है, हम लोग साधु संतों को मीठी मीठी बात करके, गहला फुसला के, बेवकूफ बना करके हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर ठाकुर जी हैं, एक ऐसा डंडा पड़ेगा। परसों आपने देखा निर्जला एकादशी के दिन, गुरुकुल में एक आदमी सीढ़ी पर बैठा था, ऐसे ही धाम से गिरा। तो भगवान की जब चाबी घूमती है तो सब होशियारी एक मिनट में निकल जाएगी। लेकिन फिर भी साधारण समाज में गलत संदेश जाता और लोग समझते हैं कि इस्कॉन में भक्त बनने का मतलब 1 साल में आप अमेरिका में मिलोगे। ये आम जनता में प्रचार हो जाता है। हम बोलते हैं भक्त बनो, सेवा करो, वो बोलते हैं अमेरिका भेज दोगे, लंदन भेज दोगे। तो ये भी इस प्रसंग से, ज्यादा तो बोलने का अधिकार नहीं है, इससे हम भक्त बने, गुरु शरणागत हो अच्छी नियत से। दृष्टांत महासागर में एक दृष्टांत है दो चेलों का। एक गुरु के दो चेला, एक दायां पांव दबाता, एक बायां, खूब मसाज करते अपने गुरु की टांग। एक ने दायां पांव हत्या रखा, बोला मैं दायां पांव का शिष्य हूं, बोला मैं बायां पांव का शिष्य हूं। तो एकदम चमका के रखते, साबुन से साफ करते, गर्म पानी से रोज मसाज करते। एक बार दोनों में झगड़ा हो गया तो एक शिष्य दूसरे शिष्य को बोला, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। तो दूसरा बोला, तू मेरी टांग तोड़ेगा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। तो दोनों में घुसा कपटी हुई। उसने कहा, मैं तेरा टांग नहीं छोड़ूंगा, टांग हुआ गुरु का। तो एक ने, जो दायां पांव वाला था, उसने बायां पांव पकड़ा उसका, और बाएं पांव वाले ने दाएं का पकड़ा, और कहा कि छोड़ूंगा नहीं तेरे टांग को, घुमाया और गुरुजी स्वाहा हो गए। ऐसे भी चेला लोग हैं, गुरु का टांग पकड़ के रखते हैं। मेरा गुरु, गुरु किसी का होता है? खरीद लिया तुमने? गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो भगवान के आदेशों को सुनता है, न कि किसी चेला का नौकर होता है गुरु, कि कोई चमचागिरी कर दे थोड़ा और झूठ मूठ कह दे गुरु को, जाके वो सुन ले। गुरु अंतर्यामी होता है। कृष्ण ही गुरु हैं, अंदर परमात्मा रूप में है, बाहर गुरु रूप में है उपदेश कर। गुरु भी अगर ऐसे चमचों की चमचागिरी सुने, अंतर्मन से न देखे, तो गुरु नहीं। अंतर्मन से देखना, सच कह रहा है या झूठ। नरोत्तम दास ठाकुर का एक पद है, उसमें एक अंत लाइन है, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार। तो उसका अंतिम पद आप पढ़िए, वो है रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र नाम के एक वैष्णव हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के काल की बात, तो उनकी शादी हुई, गृहस्थ संत थे भक्त। गुरुजी ने कहा आज तुम्हारी शादी हुई है, तुम घर जाओ, पत्नी के साथ रहो आज। तो रामचंद्र अपनी पत्नी के साथ घर आए, तो रात को अपनी पत्नी के साथ बैठे थे कमरे में, तो रात को बातें करने लगे कि मेरे गुरुजी ऐसी कथा सुनाते हैं, मेरे गुरुजी ऐसे हैं, मेरे गुरुजी दयालु हैं, मेरे गुरुजी मेरे अपराधों को माफ कर देते हैं, भागवत के फलाने प्रसंग से फलाने कथा का ऐसा सारांश बताते हैं। गुरु की प्रशंसा करते करते पूरी रात बीत गई, जबकि गुरु ने कहा था आज पत्नी के साथ रात मनाना सुहाग रात। बातें करते करते सुबह हो गई और गुरु जी ने कहा था सुबह आश्रम आ जाना फिर। तो देखा तो सुबह हो गई, सूर्योदय हुआ, तो रामचंद्र जी ने सोचा मुझे अब जल्दी गुरु आश्रम में जाना चाहिए, क्योंकि रात भर हरि चर्चा गुरु चर्चा में चली गई। तो रामचंद्र जी जब गुरु आश्रम की तरफ जाने लगे और उन्होंने ये विचार किया कि मैं स्नान भी अब मैं गुरु आश्रम में ही जाके करूंगा, तो जाते वक्त उन्होंने अपनी पत्नी का आलिंगन किया, क्योंकि पहले दिन शादी हुई थी तो लिपस्टिक लगा हुआ था होंठ पर। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी का आलिंगन किया तो छोटे कद की थी छाती तक, तो उसने ऐसे मुंह लगाया तो उनके कुर्ते में उसकी होंठ का लिपस्टिक लग गया और वो उनको ध्यान नहीं, और वो ऐसे ही आलिंगन करके तुरंत दौड़े दौड़े गुरु के पास गए। तो गुरु जी खड़े थे और शिष्य लोग भी खड़े थे, इतने में एक शिष्य की नजर उनके कुर्ते पर पड़ गई और रामचंद्र जी ने स्वयं गुरु को प्रणाम किया, तो बीच में शिष्य बोला हट, एकदम अघोरमय है, गंदा है, हट यहां से। गुरु जी ने कहा ऐसा क्यों कहते हो? कहा आप देखिए ना उसके कुर्ते पर, रात में इसने अपनी पत्नी का आलिंगन किया है, देखो सब इसकी पत्नी का मेकअप इधर आ गया। तो गुरु जी ने कहा इसने कल रात क्या अपनी पत्नी के साथ किया है तुझसे ज्यादा मुझको मालूम है। गुरु जी को सब मालूम है। अरे रामचंद्र नाम के वैष्णव बाद में राधा रानी की किंकरी जब ये शरीर में थे, एक बार तो ये 4 महीने के लिए समाधि में चले गए, तो सब लोगों ने कहा कि आपके गुरु मर गए हैं। उनके शिष्यों ने कहा नहीं नहीं, हमारे गुरु समाधि में गए हैं, वैसे ही लीला चिंतन में चले जाते हैं, उनका शरीर एकदम मृतक हो जाता है, डेड हो जाता है, हम आपको मालूम है हमारे गुरु जी वापिस आएंगे। हुआ ये, एक बार वो शिवा कुंज में भगवान के रास का ध्यान कर रहे थे कि शिवा कुंज निधि वन में रास हुआ, तो रास करते वक्त राधा रानी के नाक की फूली उनकी नाक से नीचे गिर गई और वो फूली को सब गोपियां ढूंढ रही हैं। अंत में ये रामचंद्र नाम की सखी को फूली मिली राधा रानी की। अब हुआ ये, राधा रानी के नजदीक कौन सखी है? ललिता, विशाखा, क्योंकि हर गोपी तो राधा रानी के पास नहीं जा सकती, और राधा रानी भी कुछ इंक्वायरी करेगी तो पहले ललिता विशाखा को कहेगी, वो अपने असिस्टेंट को कहेगी, फिर वो अपने असिस्टेंट को कहेगी, तो ये कई 15 दिन में ये बात लास्ट में जाएगी जो नीचे की सकी है। तो राधा रानी की फूली खो गई, 1 महीने चर्चा में लग गए, क्योंकि वो लीला चिंतन में गए थे, आत्मा उनकी वहां चली गई ना लीला में, और इधर से शरीर डेड हो गया। फिर अचानक रामचंद्र नाम की सखी को एक फूली मिल गई, रामचंद्र जी ने अपने से बड़ी सखी को दिया, उसने अपनी से बड़ी को दिया, उसने अपने से बड़ी को दिया, ललिता विशाखा का जाने में 1 महीना लग गया। बाद में राधा रानी ने इंक्वायरी की, कौन सी गोपी ने सखी मेरी, कौन सी गोपी ने फूली ढूंढी है, मैं उसको आशीर्वाद देना चाहती हूं। तो सखी को ढूंढने में, राधा रानी तक लाने में 3 महीना लगे। तो ऐसे समाधिस्त हो गए 4 महीने तक। उनके गुरु जी की कृपा, क्योंकि वो अपने शिष्य के मन की बात जानते हैं और गुरु अपने शिष्य की बात और शिष्य अपने गुरु को समर्पित है, इसलिए और समय तो ज्यादा नहीं, तो इन प्रकारेण गुरु शरणागति। और हम लोग यहां पर तो गुरु बृहस्पति और देवताओं के बीच की चर्चा है, ब्रह्मा जी के बीच की चर्चा है, लेकिन हम लोग जिस श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की अनुगत्य में भजन करते हैं, हमारी विचारधारा बहुत बड़ी है, ब्रह्मा जी से भी बड़ी विचारधारा है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, लेकिन ब्रह्मा जी का भी दोष गोपियां निकलती हैं कि ब्रह्मा को ठीक ढंग से सृष्टि करना नहीं आता है, कहते हैं। क्यों? ये जो आंखों के बीच में पलक, बार बार पलक गिरती है, ये नहीं होना चाहिए, हमेशा खुले रहने चाहिए। हम भगवान का दर्शन एक तक होके करें, पलकें बार बार गिर जाती हैं, भगवान उतनी देर के लिए ओझल हमसे हो जाते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु राधा भाव विगलित हैं, गोपी भाव विगलित, और हम लोग उनके अनुगत्य में भजन करते हैं। हमारे आचार्य लोग उन लोगों के अनुगत्य में उन्होंने भजन किया है, उनके संदेश वाहक हैं, तो हमारी गुरु परंपरा तो बहुत ऊंची है, और जिसके मूल कृष्ण स्वयं हैं। हमारी गुरु परंपरा आपने देखी होगी, कृष्ण से आई है ना, तो गुरु शरणागत होकर के तदिदि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः। और हमारी गुरु भक्ति, हमारी भगवत भक्ति, देवताओं की जो गुरु भक्ति है, पुरोहित भक्ति, वो स्वर्ग का राज पाने के लिए है, स्वर्ग की सत्ता मिल जाए।
लेकिन जो भक्त वैष्णव की भक्ति गुरु भक्ति है वो उससे भी ऊपर की सत्ता पाने के लिए, वो कौन सी? कृष्ण प्रेम पाने के लिए, गोलोक धाम पाने के लिए, वैकुंठ धाम पाने के लिए। इस यमुनाचार्य नाम के एक भक्त हैं हमारे वैष्णव, उन्होंने कहा यदवदी मम चेत पदार बिंदे नव नव रस धाम दत्तम रंतुमासीत तदवदी वन नारी संगमे स्पर्श माने भवती मुख विकार सुष्टु निष्टिवन निष्टिवनम। कि जब से मैं भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करता हूं, कथा सुनता हूं, तब से ही संसार का के विषयों का चिंतन जब मेरे मन में आता है तो मेरे मुंह से थू 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 थू, मुझे घृणा हो गई है सांसारिक विषय से। कहते इससे गुरु चरणाश्रित होकर के ब्रह्मानंदी में एक बहुत अच्छा पद है, मेरी ये पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, मेरी ये पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। गुरु महाराज क्या करते हैं? अपने शरणागत के पाप की गठरी को छीन लेते हैं। जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं, जिस दिन शिष्य गुरु शरणागत होता है, दीक्षा लेता है, उस दिन गुरु जी उसके पाप की मटकी को छीन लेते हैं और कृष्ण को दे देते हैं। इसे परमानंद ने पटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। अब भगवान क्या करते हैं, जैसे गुरु हमारे पाप रूपी इन कामनाओं वासनाओं भरे थैली मटकी को कृष्ण के हाथों में देते हैं, तो भगवान कृष्ण तुरंत इस मटकी को फोड़ देते हैं। जन्म जन्मांतर की कामनाओं वासनाओं पापों की जो भरी मटकी है, इससे गुरु पापों को नाश करवा देते हैं भगवान कृष्ण के माध्यम से। लेकिन एक कालवा देवी में एक मारवाड़ी था, वृंदावन से गुरु जी थे उसके, तो गुरु जी ने एक बार वो बॉम्बे आए तो कहा अभी आप तो एक साल बाद आओगे, मैं एक साल तक क्या करूंगा। गुरु जी ने कहा मैं तुमको एक शालिग्राम शिला देता हूं कृष्ण राधा की, तुम शालिग्राम की उपासना करना और जो ध्यान भजन मैंने बताया इसको करना, फिर मैं एक साल में हर साल तो आता ही रहता हूं। तो अपने भक्त व्यापारी को शालिग्राम दे करके महात्मा वृंदावन चले गए। उधर से फोन करते रहते शालिग्राम की पूजा ठीक हो रही है, उसने कहा ठीक हो रही है। हुआ यह कि जैसे गुरु जी को उसने ट्रेन में बैठाया वृंदावन की, इसने शालिग्राम पता नहीं कहां रख दिया, चूहा लेके शालिग्राम ले भाग गया, छोटा सा शालिग्राम तो था। अब गुरुजी फोन करते, मैंने जो शालिग्राम दिया उनके लिए तो भगवान है ना, गुरुजी समझते हैं मैंने साक्षात ठाकुर जी अपने चेले को दिया है। और ये फोन पर ही बोलता ठीक ठाक सेवा हो रही है, आप चिंता मत करिए। कहा एक साल बाद तो मैं आऊंगा ही, फिर तीन महीने, कहा नौ महीने में तो आऊंगा ही, इतने में एक साल पूरा हो गया। तो फिर उन्होंने मथुरा स्टेशन से फोन किया, ठाकुर जी को मैं सुबह तक पहुंचूंगा, तब तक तुम सुबह का भोग लगा देना। उसने कहा मैं नियमित रूप से लगाता हूं, लगा दूं। अब रात भर उसको नींद नहीं आई, ठाकुर जी तो है नहीं, शालिग्राम तो चूहा ले गया, सुबह में गुरु को क्या बताऊंगा। तब मार्केट से जामुन के दाने खरीद के लाया काले वाले, तो सुबह उसने जैसे गुरु जी ने कहा था, ठाकुर जी को स्नान कराना, फिर उनको ड्रेसिंग कर देना, तो इसने जामुन के दानों को पहले तो साबुन रगड़ा, फिर टावल से साफ करने लगा तो जामुन की खाल निकल गई। इतना इतने में गुरुजी आज धमक गए सुबह। तो गुरुजी ने कहा, सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन करना चाहता हूं, मेरे शालिग्राम ठाकुर कहां हैं। इतने में वो जामुन सड़ा हुआ लेकर के इसने सामने से रख दिया। गुरुजी ने कहा, ये ठाकुर जी की खाल किसे निकाल दे। तो शिष्य बोला, आपके आदेशानुसार मैं प्रतिदिन इनको स्नान कराता था। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी सड़ गए तो हम क्या जानी। तो आपके आदेशानुसार मैं तो सेवा तो इनका किया है, अब इनकी खाल निकल गई इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे चेला लोग भी हैं, बाहर भी है अंदर भी है सब जगह है। भगवान करे हमारी रक्षा हो। और आज यहीं पर समापन, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कहिए, नहीं तो प्रसाद खाने सीधे जाइए।
हरे कृष्णा। संस्कृत में सुभाषित है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। तो बृहस्पति जी ने एक बार चेतावनी देके इंद्र को माफ कर दिया होता था तो आगे का जो सब सिलसिला हुआ।
एक दिन पहले माफ कर दिया था उसको। एक बार भगवान विष्णु ने गुरु बृहस्पति क्षीर सागर में गए थे तो भगवान विष्णु ने अपने गले की माला बृहस्पति गुरु के गले में डाली। इतने में गुरु स्वर्ग आए, अपना चेला इंद्र के गले में डाली। इंद्र ने एक माला निकाल के अपने हाथी ऐरावत के गले में डाली और ऐरावत ने सोंठ से निकाल के अपने पांवों से कुचल दी। फिर कई दफे माफ करेंगे। एक दफा अहिल्या का हरण करने चला गया। गौतम ऋषि की बेटी थी अहिल्या, पत्नी ब्रह्मा की बेटी। रामचरित रामायण में इसकी कथा आती है, वाल्मीकि रामायण में। तो इसकी नजर ब्रह्मा की बेटी पर, बहुत सुंदर थी अहिल्या। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी की शर्त के अनुसार अहिल्या गौतम ऋषि को ब्याही गई और इंद्र ने समझा कि इतनी सुंदर पत्नी महात्माओं का क्या काम, पत्नी तो हमारे पास होनी चाहिए, जबकि इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी पत्नियां हैं। तो इंद्र को कई दफे माफ कर दिया है और अभी भी उसको माफ करते हैं, लेकिन अंतर ध्यान हो गए हैं। ऐसा नहीं कि उसको कुछ बोल के गए हो, प्रसंग यही है ना, क्योंकि बोले नहीं, अंतर ध्यान हो गए, मिले ही नहीं। और भक्ति विनोद ठाकुर एक वक्तव्य में ऐसा लिखते हैं, अगर कोई गुरु कोई वैष्णव किसी से नाराज होता है, अगर वो गाली गलौज करे, डांटे, साफ दे, समझना चाहिए कृपा कर रहा है। लेकिन अगर वो बात ना करे, बात करना बंद कर दे, व्यवहार बंद कर दे, समझ लेना चाहिए कि ये हमसे नाराज है। भक्त विनोद ठाकुर इसे गुरु पशुपति ने कुछ कहा नहीं, अंतर ध्यान हो गए हो कि देखो क्या करता है। तब बाद में ब्रह्मा जी ने उत्तष्टा के लड़के विश्वरूप को उनका पुरोहित बनाया। पुरोहित भी किसलिए बनाया कि ऐसा यज्ञ करे दोबारा गद्दी पर बैठा दे। ऐसा थोड़ी बनाया कि गद्दी यदि छोड़ के मैं भजन करना चले जाऊं। दोबारा गद्दी कैसे मिलेगी, अधिकार सत्ता कैसे मिलेगी, इसे विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। सभी लोग बनाते हैं। हाँ, इसमें भी पुरोहितों का भी व्याख्यान हम देना भूल गए। विश्वरूप को पुरोहित बनाया था तो उसके ऊपर भी, खाली पुरोहित के ऊपर अच्छी कथा हो सकती है। दो तीन घंटा होगी, लेकिन इधर तो टाइम नहीं मिलता है ना। एक बार दो तीन घंटा कथा कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। अरे हमसे बड़े बड़े महात्मा यहाँ हैं, तो हम तो बटाटा हैं, आलू। हमने आश्रम बाबू कहा है आप हमको आलू समझो। जैसे आलू कहीं भी खप जाता है, मटर में भी डाल दो, टमाटर में भी डाल दो, मतलब हर सब्जी में बटाटा डालो तो चल जाता है। तो हमने जासिम बाबू को कहा हमारा बटाटा में आप गिनती करो, जब कोई नहीं तो हमको बटा दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा कीर्तन करो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय माधव जय जय मुकुंद जय जय माधव जय जय माधव जय जय मुकुंद जय जय माधव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।